నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
నారాయణం నమస్కృత్య.
నారాయణం నమస్కృత్య.
నరం చైవ నరోత్తమం.
నరం చైవ నరోత్తమం.
దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం. తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు.
నిత్యం భాగవత సేవయా.
భగవత్యుత్తమశ్లోకే.
భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ.
గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం చౌథా స్కందం 21వ అధ్యాయ. మహారాజ్ పృథు ద్వారా ఉపదేశ్. శ్లోక్ సంఖ్య 50. అద్భుతం
ఇదం
నాథ తవ
ఆజీవ్య అనుశాసనం ప్రజా
అనురాగః
మహతాం ప్రకృతి
కరుణా
ఆత్మనాం.
నాత్యద్భుతమిదం నాథ
తవాజీవ్యానుశాసనం
ప్రజానురాగో మహతాం
ప్రకృతిః కరుణాత్మనాం.
నాత్యద్భుతమిదం నాథ తవా జీవ్యానుశాసనం ప్రజానురాగో మహతాం
ప్రకృతిః కరుణాత్మనా.
నాత్యద్భుతమిదం నాథ తవా జీవ్యానుశాసనం ప్రజానురాగో మహతాం
ప్రకృతిః కరుణాత్మనా.
నాత్యద్భుతమిదం నాథ తవా జీవ్యానుశాసనం
ప్రజానురాగో మహతాం
ప్రకృతిః కరుణాత్మనా. నాత్యద్భుతమిదం నాథ
తవా జీవ్యానుశాసనం
ప్రజానురాగో మహతాం ప్రకృతిః కరుణాత్మనా.
నాత్యద్భుతమిదం నాథ
తవా జీవ్యానుశాసనం
ప్రజానురాగో మహతాం
ప్రకృతిః కరుణాత్మనా.
నాత్యద్భుతమిదం నాథ
తవా జీవ్యానుశాసనం
ప్రజానురాగో మహతాం
ప్రకృతిః కరుణాత్మనా.
నాత్యద్భుతమిదం నాథ
తవా జీవ్యానుశాసనం
ప్రజానురాగో మహతాం
ప్రకృతి కరుణాత్మనా. శబ్దార్థ
Na nahi.
Atyadhik.
Adbhutam.
Ascharyajanak.
Idam.
Yaha.
Natha.
He Swami.
Tava.
Tumhara.
Ajivya.
Ayaka Srot.
Anushasanam.
Anushasanam.
Ajivya.
Dirgha.
आजीव्य आयका स्रोत अनुशासनम प्रजा के ऊपर शासन
प्रजा
नागरिक
अनुरागः
प्रेम
महताम
बड़े का
प्रकृति
करुणा
दयावान
आत्मवान
जीवात्माओं का
अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे नाथ, अपनी प्रजा पर शासन करना तो आपका वृत्ति परक धर्म है। यह आप जैसे महापुरुष के लिए कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं और अपनी प्रजा के हितों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। यही आपके चरित्र की महानता है। तात्पर्य, राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे और अपनी जीविका के लिए उस पर कर लगाए। चूंकि वैदिक समाज चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में विभाजित है, अतः शास्त्रों में उनकी जीविका के साधनों का भी उल्लेख हुआ है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे ज्ञान का प्रसार करें, अतः वे अपने शिष्यों से दान लें। किंतु राजा को चाहिए कि वह प्रजा को जीवन के उच्चतम स्तर तक उठने के लिए सुरक्षा प्रदान करें, अतः वह इसके लिए प्रजा पर कर लगा सकता है। क्योंकि वणिक वर्ग सारे समाज के लिए अन्न उत्पन्न करता है, अतः वह इससे थोड़ा लाभ ले सकता है। जबकि शूद्र ब्राह्मणों क्षत्रियों या वैश्यों की भांति कार्य नहीं कर सकते, अतः उन्हें समाज के उच्चतर वर्गों की सेवा करनी चाहिए और उनसे अपने जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी करवानी चाहिए। यहाँ पर योग्य राजा या राजनेता के लक्षणों को इस प्रकार बताया गया है। उसे लोगों पर अत्यंत दयालु होना चाहिए और उनके मुख्य हित का ध्यान रखना चाहिए, जो कि उन्हें भगवान का उच्चस्थ भक्त बनना है। महापुरुष स्वभाव से अन्यों का हित करने वाले होते हैं और एक वैष्णव तो समाज का सबसे दयालु व्यक्ति होता है। अतः हम वैष्णव नायक को इस प्रकार प्रणाम करते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एकमात्र वैष्णव नेता ही लोगों की समस्त अभिलाषाओं को पूरा कर सकता है। वांछाकल्पतरु, और वह अत्यंत दयावान होता है, क्योंकि वह मानव समाज का महान कल्याण करता है। वह पतित पावन है, क्योंकि यदि राजा या शासनाध्यक्ष ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के पद चिन्हों पर चलते हैं, जो स्वभावतः प्रचार कार्य में अग्रणी होते हैं, तो वैश्य भी वैष्णवों तथा ब्राह्मणों का अनुसरण करेंगे और शूद्र इनकी सेवा करेंगे। इस प्रकार सारा समाज जीवन की परम सिद्धि हेतु एक परिपूर्ण संस्था बन जाता है।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुतम सावधूतम परिचर्जन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधाकृष्णपादान् सहगणललिताशिवशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकृतरूपेश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे नाथ अपने प्रजा पर शासन करना तो आपका वृत्ति परक धर्म है। यह आप जैसे महापुरुष के लिए कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं और अपनी प्रजा के हितों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। यही आपके चरित्र की महानता है। तो अन्यों के हित के बारे में सोच विचार करना और कार्यरत रहना, ये महान व्यक्तियों का लक्षण होता है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है या जिसकी चेतना निम्न श्रेणी की होती है, जो सभ्य जीवन में आगे बढ़ा हुआ नहीं होता है, ऐसे नहीं बस भगवंता जी क्लास जो आगे बढ़ा हुआ नहीं होता है, वो अपने संकुचित विचार के द्वारा सोचता है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम्। ये आपने सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम् तो कम से कम सुना होगा नहीं सबने, बराबर। तो ये क्या है वसुधैव कुटुंबकम्?
पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार है।
क्या कैसे?
उदार चरित,
मतलब ये शब्द भेद क्या है?
वसुधा यानी पृथ्वी, एव यानी कि वही, कुटुंबकम् जो हमारा परिवार है, पूरा पृथ्वी लोक जो है वो हमारा परिवार के रूप में हमको,
बराबर। वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधा एव कुटुंबकम्। वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का नाम वसुधा क्यों है? सब प्रकार के ऐश्वर्य वो धारण करती है, तो इसलिए उनका नाम है वसुधा या वसुंधरा। कभी कभी लोग गलती से इसको वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, वो भी एक दृष्टि से ठीक है, क्योंकि कृष्ण का ही कुटुंब है सब कुछ। कृष्ण का एक नाम है वासुदेव, तो वासुदेव या कृष्ण का ही परिवार है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीज प्रधापिता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी योनियां, 84 लाख योनियां यहाँ पर हैं, वो सारे के सारे उनसे उत्पन्न होती हैं और इन सब के लिए बीज प्रदाता वही होते हैं। जो बीज प्रदाता होता है वो पिता माना जाता है, इसलिए वो कहते हैं अहम बीज प्रदह पिता। पिता वो होता है जो बीज प्रदान करता है। तो क्योंकि श्री कृष्ण बीज प्रदान करते हैं, तो वो परम, वो पिता माने जाते हैं सारे योनियों की। और क्योंकि सारे योनियां श्री कृष्ण के संतान हैं, इसका मतलब है कि सारे योनियां, सारा मनुष्य समाज, सब कुछ, सब भाई बहन हैं। तो जब पिता एक होता है तो परिवार, सारे जितने भी लोग रहते हैं वो कौन होते हैं? परिवार के सदस्य होते हैं, तो एक परिवार होता है। तो ये कृष्ण का परिवार है। तो उस दृष्टि से वासुदेव, परंतु व्याकरण के दृष्टि से ठीक नहीं है, वासुदेवस्य कुटुंबकम बोलना चाहिए कि वासुदेव का कुटुंब है। फिर भी वासुदेव कुटुंब साधारण भाषा में बोल भी ले, कृष्ण कुटुंब, कृष्ण का कुटुंब, तो कृष्णस्य कुटुंब, तो ये परिवार तो है, परंतु असली श्लोक क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। तो जो लोग उदार चरित्र के, चरित्र विचारधारा के होते हैं, जिनका चित्त उदार होता है, वो क्या सोचते हैं कि ये सारा पृथ्वी, सारी पृथ्वी मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। परंतु जिसकी लघु चेतना होती है, बहुत संकुचित हृदय के होते हैं, छोटे छोटे दृष्टि से देखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, स्वार्थी होते हैं, ये मेरा तुम्हारा नहीं, ये मेरा है, अयम निज है परो व्यक्ति, ये मेरा वो तुम्हारा, इस तरह का भेद करने वाले व्यक्ति, मतलब जो ऐसे सोचते हैं, इस तरह से विचार करते हैं, गणना, तो ऐसे जिनकी गणना होती है, विचारधारा होती है, लघु चेतसाम, लघु मतलब बहुत छोटा, चेतसाम मतलब जिनकी चेतना है, तो जो लोग इस प्रकार से भेद करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, वो तुम्हारा, ये मेरा, वो लघु चेतसाम। परंतु जिनकी चेतना उदार है, उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम, तो जिनकी विचारधारा विशाल होती है, वो क्या सोचते हैं कि ये सारा परिवार एक है, ये सब मेरा, सारे मेरे परिवार के सदस्य ही हैं। ये बहुत आजकल इस तरह की विचारधारा बहुत आवश्यक है, क्यों, हम लोग अपने और पराये के बारे में बहुत सोचते हैं, जनस्य मोहोयम अहम मनेति, ये मेरा, ये सब मेरा है, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी भूमि, तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने आप में ही उलझ जाता है। जिस हद तक हम अपने आप में उलझ गए हैं और अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु समझते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में कौन, मैं हूँ, तो ये जो विचारधारा एक होती है सबकी, जिसमें हम अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, तो इसके कारण ये संकुचित एक चेतना या विचारधारा उत्पन्न होती है, इससे स्वार्थ उत्पन्न होता है, फिर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। जब स्वार्थ होता है, फिर साधारण परिणाम इसका है कि ईर्ष्या भी उत्पन्न होगी। जब स्वार्थ है, इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ, मेरे लिए चाहता हूँ, स्व अर्थ, लेकिन ये अर्थ या लाभ क्या है ये मुझे नहीं मालूम, इसलिए सब कुछ भौतिक चीज़ों को एकत्र करना चाहता हूँ, और जब मैं सब कुछ एकत्र करने का प्रयास करता हूँ, सफल तो नहीं हो सकता ना, बड़े बड़े राजा, विश्व सम्राट भी हुए जिन्होंने प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए, आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो कह सके कि सब कुछ मेरी ही संपत्ति थी, युधिष्ठिर महाराज आदि ऐसे महान राजाओं के सिवाय, पृथु महाराज ऐसे राजाओं के सिवाय, आजकल तो कौन कह सकता है, सिकंदर इतना बड़ा राजा था, अलेक्जेंडर, महान सिकंदर कहते थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऐसे नाम दे देते द ग्रेट, ग्रेट, तो ग्रेट मतलब महान, कैसे महान हुए, 34-35 साल की आयु में मर गए, क्या लाभ, वो राज्य करते 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 आए, सिंधु नदी तक आए, फिर तब तक उसके जो सैनिक थे वो इतने थक गए थे कि इतने कमज़ोर हो गए थे कि उन्होंने कहा कि अभी हमें वापस जाना है, ये सिकंदर अब और यहाँ युद्ध नहीं कर सकते, और इसलिए तो उनको जाना पड़ा वापस, और रास्ते में बीच में वापस जाते जाते कहीं बीच रास्ते में वो मर गए। तो हम बोलते हैं महान महान, लेकिन कब तक कम ये कर सकते हैं? कोई भी हर चीज़ का को रख के नहीं कर सकता है। वो कहानी आपको बोली होगी ना मैंने सिकंदर राजा की, याद है? सिकंदर राजा के तीन इच्छाएं थी मृत्यु के समय, याद है किसी को? नहीं बताया, मैंने बताया होगा निश्चित। जब राजा सिकंदर सिंधु नदी से वापस जा रहा था अपने देश में यूरोप में, तो उसको कोई बीमारी लग गई। 33-34 साल का था, लेकिन इतना बड़ा सम्राट था वो, राजा था। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरी तीन इच्छाएं हैं कि जब मेरी मृत्यु होगी, अब याद आए कि नहीं? हाँ बोलो, कैसे अकेले को याद है? बोलो।
एक ही पॉइंट बताया कि हाथ बाहर रखने को इच्छा रखनी चाहिए, हाथ तो बाहर रहना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि
नहीं। वो तात्पर्य बात है, एक ही पॉइंट है। हाँ, तो राजा ने कहा अपने मंत्रियों से, अभी मुझे जाने का समय आ गया है, तो मेरे तीन इच्छाएं हैं। एक, कि जब मेरा शव ले जाया जाएगा दफनाने के लिए, तो वहाँ उनमें क्या करते हैं, वो डब्बे में रखते हैं ना, डब्बे में रख के डब्बे बंद करके फिर उसको दफनाते हैं। तो डब्बे के बाहर मेरे हाथ ऐसे होने चाहिए। तो मंत्री बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। दूसरे बोले, मैंने जो पैसा कमाया है, जैसे मेरा जब शव ले जाया जाता है दफनाने के लिए, तो ये सब रत्न वगैरह है वो मेरे शरीर के सामने ऐसे फेंक देना चाहिए। और तीसरी बात कि जो मेरे शरीर को उठा के ले जाएंगे कंधे पे, वो मेरे वैद्य होने चाहिए, जितने भी वैद्य हैं यहाँ पर वो होने चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है हम करेंगे, परंतु इसका कारण क्या है बताइए आप। तो देखो, हाथ बाहर रखने के पीछे कारण ये है कि अभी मेरी बुद्धि ठिकाने आ गई है। बुद्धि ठिकाने आने के कारण अब मैं सत्य समझ गया हूँ। मैं सोच रहा था कि सब जगह जाके विजय प्राप्त कर लूँगा, ये सब मेरा हो जाएगा, लेकिन अब मैं समझ गया कि ऐसा नहीं है। तो हाथ बाहर रखने से मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। तो देखो मेरे हाथ भी ऐसे ही हैं, मुट्ठी में कुछ नहीं है, खाली हाथ में जा रहा हूँ। तो ये सबको याद रखना चाहिए। मैं इतना बड़ा राजा बना, इतने देशों के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर लिया, फिर भी जाते समय कुछ भी नहीं ले जा पाया। और दूसरी बात, ये रत्नों को ऐसे बिखारने का प्रश्न है कि जितना भी है वो सब यहीं रह गया, तो उसका मूल्य क्या है? ये मेरे पास जो हीरे मोती चांदी सोना, क्या मूल्य इसका? मैं तो नहीं ले जा पा रहा हूँ, ये तो बस मिट्टी के समान है, कोई मूल्य नहीं। और तीसरी बात कि मेरे वैद्य वही मेरा शव उठा के ले जाएंगे। मैं राजा हूँ, इतने सारे दुनिया के सबसे बड़े बड़े वैद्य मेरी सेवा में हैं, लेकिन वो भी मुझे बचा नहीं पाए। कौन हमारी रक्षा कर सकता है? जब मृत्यु का समय आ जाता है तो सबको जाना ही पड़ता है। तो ये मैं संदेश सारी दुनिया को देना चाहता हूँ, इसलिए ये तीन मेरी अंतिम इच्छाएं हैं। और फिर उन मंत्रियों ने उनकी इच्छाएं पूर्ण कर दी। तो चाहे वो छोटा व्यक्ति हो जो सोचता है ये मेरा मेरा मेरा, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो सिकंदर जैसे, ये सब चोरी की भावना है ना। प्रभुपाद जी बताए करते थे कि सिकंदर राजा, अब सिकंदर राजा की बात आई तो प्रभुपाद ने बोला हुआ एक कहानी बोल दो कि एक बार राजा सिकंदर के राजधानी में एक चोर था, वो उसने कुछ भोजन कहीं से चोरी किया, उसको पकड़ा गया, उसको दंड दिया गया। तो सिकंदर राजा भी थे वहाँ पे जा रहे थे, तो राजा के सामने लाए, देखो इसने चोरी किया। तो राजा ने कहा अच्छा चोरी किया तो इसको दंड देना चाहिए। तो चोर ने कहा कि राजन मुझे दंड मिले ठीक है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा दंड मिलना चाहिए। तो राजा को गुस्सा आया, अरे ये कैसे बात कर रहा है, राजा से ऐसे बात कर रहा है। उसने कहा मैंने तो, मैं गरीब हूँ और मेरे परिवार में धन नहीं है, उनके उनको खिलाने के लिए मैंने कुछ भोजन चोरी किया, लेकिन आप जगह जगह जाके आपके सैन्य बल से लोगों का धन छीन रहे हो, उनका राज्य छीन रहे हो, तो आप सबसे बड़े चोर हो। चोर तो आप हो सबसे बड़े, मैं तो छोटा चोर हूँ, आप इतने बड़े चोर हैं इसलिए दंड आपको मिलना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे खीरा चोर या हीरा चोर, चोर तो चोर ही है। खीरा मतलब क्या, ककड़ी, कोई ककड़ी चोरी करेगा और कोई हीरा चोरी करेगा, खीरा या हीरा, चोर तो चोर है, इसलिए हीरा चोर खीरा चोर। इसलिए जो राज्य को चोरी करता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये लघु चेतसाम, अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम, जनस्य मोहो यम अहम ममेति, मेरा 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 मेरा। तो ऐसा जब व्यक्ति सोचता है अपने बारे में, अपने ही बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, ऐसे लोग शायद मिले भी होंगे ऐसे, कि बहुत ज़्यादा अपने ही बारे में सोचते हैं। जब उनको अपनी कोई बात होती है तो अपने हमारे पास आते हैं बात करने के लिए, जब उनका कोई फायदे की बात नहीं होती है तो हमारे पास नहीं आते हैं बात करने के लिए। हमारे साथ दोस्ती रखते जब उनको कोई काम होता है हमसे, बाकी समय जब हमारी मदद करने की का समय आता है उस समय वो इतने आतुर नहीं होते। ऐसे देखा है आपने लोगों को, ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, तो क्यों होते हैं वो, दूसरों की मदद क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अपने चित्त में अपने ही विचार इतने भरे हैं, अपने ही बारे में इतना सोच रहे हैं कि अन्यों के लिए हृदय में स्थान नहीं है ना। जब अपने ही बारे में सोच सोच के हृदय भर गया है, चित्त भर गया है, तो कुछ जगह तो होनी चाहिए ना अन्यों के बारे में सोचने के लिए। इसलिए वही व्यक्ति अन्यों के बारे में सोच सकता है जो कि अपने बारे में कम सोचता हो। और पृथ्वी महाराज ऐसे एक महान व्यक्ति थे, और वैष्णव ऐसे ही होते हैं, वैष्णव पर दुख दुखी होते हैं क्योंकि अपने हित के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अन्यों के हित के बारे में सोचते हैं। यदि वो अपने ही बारे में सोचते होते तो अन्यों के बारे में चिंता नहीं करते, बोले जाने दो, ऐसे कितने सारे लोग हैं। प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही थे, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में इस संदर्भ में, कौन सा श्लोक, नैवो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचेत ततो विमुख इन चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। तो प्रहलाद महाराज जब भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि हे प्रभु न उद्विजे, मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूँ, किससे विचलित नहीं हूँ, नो द्विजे नहीं वो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यास, ये भौतिक जगत को कभी कभी वैतरणी नदी बताया जाता है क्योंकि इसको पार करना प्राय असंभव है। पर दुरत्यय मतलब इसको पार करना बहुत मुश्किल, तो ये भौतिक जगत सबको कष्ट देता है, बहुत ज्यादा कष्ट, लेकिन मैं विचलित नहीं हूं हे प्रभु। न उद्विजे परदुरत्य वैतरण्यास, तो ये कष्ट प्रद जो संसार है ये मेरे को कष्ट नहीं दे सकती है, ये मुझे कष्ट नहीं देती, मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूं इसके कारण। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा चित्त आपके गुणगान में मग्न है। नहीं वो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्यास त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, आपके वीर्य के गान में, गान के अमृत में मेरा चित्त मग्न है। त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, क्योंकि मैं सदैव आपके बारे में सुनता हूँ, बोलता हूँ, सोचता हूँ, इसलिए ये दुख भरे संसार में रहते हुए भी मैं सुखी हूँ। मेरे लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, अपनी नहीं पड़ी है मुझे कोई भी, लेकिन सोचे ततः, लेकिन मैं शोक कर रहा हूँ अन्यों के लिए, विशेष करके उनके लिए विमुख चेतस, जिन्होंने अपना मुख आपसे हटा लिया है, आपसे विमुख हो गए हैं वो। सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, और अपने इंद्रियों के हित के लिए, इंद्रियों के भोग के लिए, इंद्रियों के संतुष्टि के लिए माया सुखाय, माया का सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं आपको भूल के। भरम उद्वहतो विमूढ़ान, ऐसे लोग विमूढ़ हैं, बहुत ज्यादा मूढ़ या मूर्ख हैं, बिना वजह ऐसे कर्तव्यों को अपने कंधों पे लेते रहते हैं, अपने सर पे उठाते रहते हैं, आवश्यकता नहीं है फिर भी व्यस्त होने के नाम पर और अपने कर्तव्यों को निभाने के नाम पर, प्रसिद्धि के नाम पे, प्रतिष्ठा के नाम पे, नियंत्रण करने के नाम पर वो तरह तरह के बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, और जिसके कारण फिर उनको ना तो समय होता है ना कोई वृत्ति होती है भगवान की ओर आने के। माया सुखाय भरम उद्भवतो विमूढ़ान, तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मेरे लिए कोई चिंता नहीं है, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए मेरी चिंता केवल है तो किन के लिए? उन मूर्खों के लिए जो आपसे विमुख हो गए हैं। तो पहली बात क्या है, जो केवल अपने ही बारे में सोचता है वो कभी दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता है, कम से कम भला नहीं सोच सकता, बुरा सोचेगा लेकिन भला नहीं सोचेगा। तो यदि हमें अपने आप के बारे में इतना नहीं सोचना है तो क्या करना है? कृष्ण की भक्ति करनी है, जैसे प्रहलाद ने किया। जब कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारे हृदय अपने आप ही इतना आनंदित हो जाएगा कि फिर क्या होगा, हम अपने आप ही अन्यों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप अपने लिए सोच नहीं रहे हैं ना, तो हृदय खाली है, अभी कृष्ण से भरा है। तो जब अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं तो हृदय में बहुत जगह है, तो सारा हृदय अन्यों के लिए हो जाता है, और इसको संत कहते हैं, सच्चा संत वैष्णव। जो भगवान का सच्चे भक्त होता है वो ऐसा होता है, जो अपनी चिंता न करके केवल सबके बारे में चिंता करे कि सबका भला कैसे हो ये दुनिया में। आजकल कोई ऐसे सोचे तो कहते ये भला नहीं, ये भोला है इसलिए ऐसे सोच रहा है। कोई बात नहीं, भोला हृदय से होना चाहिए, इस तरह के भोला नहीं कि लोग हमको, हमारा शोषण कर सकें या हमको धोखा दे सकें, ऐसे नहीं, लेकिन मासूम होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जिससे कि हम अन्यों के बारे में भी सोच सकें। और ये जो गुण है ये बहुत ही दुर्लभ है, आसानी से नहीं पाया जाता। जब स्वार्थ शब्द की गलत धारणा लोगों में होती है तो वो अपना हित ऐसे चीजों के इकट्ठे करने में समझते हैं, कि मैं जितना ये धन वन सब इकट्ठा करूंगा इसमें मेरा हित है, तो इस तरह का स्वार्थ नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है वैदिक सभ्यता में। परंतु प्रहलाद महाराज तो कहते ही है ना, क्या कहते हैं, सच्चा हित क्या है, नते विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मालिना। तो वो कहते हैं कि सच्चा स्वार्थ जो है वो भगवान विष्णु या कृष्ण की भक्ति करने में है। तो क्योंकि स्वार्थ शब्द की परिभाषा ही गलत है, एक धारणा गलत है, तो ऐसे मग्न हो जाते हैं अपने निम्न श्रेणी के स्वार्थ में, अपने झूठे स्वार्थ में, फिर अन्यों के लिए कोई स्थान नहीं, इसलिए फिर अन्यों की टांग खींचो, अन्यों का बुरा करो, और भले हमारी आवश्यकता भी ना हो इस चीज़ की, लेकिन उसको नहीं मिलना चाहिए, ईर्ष्या होती है। इसलिए हमने पहले कहा स्वार्थ से ईर्ष्या होती है। कृष्ण भावना भावित जब हम नहीं होते हैं तो स्वार्थी होते हैं। जब सच्चा स्वार्थ नहीं जानते तो मिथ्या स्वार्थ के शिकार बन जाते हैं। जब मिथ्या स्वार्थ हो जाता है तो फिर ईर्ष्या करने लगते हैं। जब ईर्ष्या करते हैं तो अन्यों के अहित के लिए हम कार्य करने में मग्न रहते हैं, कैसे उसको नुकसान किया जाए, कैसे उसको उसका कुछ खराब किया जाए। जब वैर होता है दोनों के बीच में तो उस समय भी लोग अपने बारे में नहीं सोचते, मेरा बुरा हो चलेगा लेकिन उसका बुरा होना चाहिए। वैष्णव क्या सोचता है, मेरा बुरा हो कोई बात नहीं, उसका भला हो। भौतिकतावादी क्या सोचता है, जब वैर की सीमा तक पहुंचता है, मेरा बुरा हो चलेगा लेकिन उसका डबल बुरा होना चाहिए, उसका तीन गुना ज्यादा बुरा होना चाहिए मेरे से, मैं सहन कर लूंगा बुरा लेकिन उसको मेरे से ज्यादा कष्ट होना चाहिए। सचिनंदन महाराज एक बार बता रहे थे कि उनके जो चाचा वगैरह थे, चाचा ये कोई तो थे, मामा चाचा जो भी, उनका विवाह ठीक नहीं चला। आप तो जानते हैं पाश्चात्य देशों में थोड़ी कुछ तकलीफ हो जाती है, तलाक 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 कर देते हैं। मराठी में तो क्या बोलना, घटस्फोट ना,
घटस्फोट
घटस्फोट घटस्फोट, नहीं या नहीं अच्छा है, तलाक बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में इतना बुरा संबंध हो गया, तो तलाक करते समय क्या, वहाँ का कानून क्या है कि पति के पास जितने भी संपत्ति है आधा पत्नी को जाना चाहिए तलाक होने के बाद। अब ये व्यक्ति के पास बहुत बड़ा बंगला था, करोड़ों करोड़ों रुपए का बंगला था, तो तलाक करने के पहले उसको तलाक का कानून पता था, तो उसने क्या किया, जो सारा बंगला जो करोड़ों करोड़ों रुपए का है उसने 50 रुपए में बेच दिया। क्यों, क्या उसको केवल 25 रुपए मिले, समझ गया, मेरा नुकसान हो गया कबूल है, उसका भी नुकसान होना चाहिए। यह है बात, यह है भौतिकता वृत्ति। जब वैर हो जाता है तो आदमी इस प्रकार से सोचते अन्यों के बारे में, और ये माया ऐसी ही है, हमको और आगे ऐसे लालच प्रलोभन देती रहती है, तुमको मिलेगा, तुम चिंता नहीं करो, और मिलेगा तुमको, और मिलेगा, हमारे स्वार्थ को बढ़ाते रहती है। ये माया का काम है, हमारे स्वप्नों को और भी हमें स्वप्न अवस्था में रखती है, तुमको इतना मिला ना, और मिलेगा, और प्रयास करो, और मिलेगा, और मिलेगा, और इसी में व्यक्ति सारा जीवन बर्बाद कर देता है, फिर मृत्यु आ जाती है। मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, भला उसका वो कहें दूसरे से ले रहा हो लेकिन उसको भी काटेंगे, यही चल रहा है ना आजकल दुनिया में। तो सनत कुमार प्रभु आए थे तो वह कहानी बता रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति समुद्र के तट पर गया, तो वहाँ पे उसने एक शंख देखा, नीचे शंख मिलते हैं ना समुद्र के तट पे, तो ये शंख एक विचित्र शंख था, ये बोलने वाला शंख था, बात कर रहा था वो। तो उस व्यक्ति ने शंख को उठाया तो शंख ने अचानक बोला उस व्यक्ति से, मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दे सकता हूँ। तो व्यक्ति से, अरे वाह बढ़िया है, तो ठीक है एक सोने का सिक्का दे दो। तो शंख ने उत्तर दिया, एक सिक्का क्यों, दो दूंगा। बढ़िया, दो दे दो मुझे। दो क्यों, चार दूंगा ना। चार दूंगा, दे दो। बढ़िया, चार दे दो मुझे। चार क्यों, आठ दूंगा ना। अरे आठ दे दो फिर, आठ दे दो। अरे आठ क्यों, सोलह दे दो। अभी इसको चिढ़ने लगा धीरे धीरे से, ठीक है सोलह दे दो। अरे सोलह क्यों, बत्तीस। ऐसे करते करते उसने जान ले, एक तो दे दो कम से कम। फिर शंख बोला, एक क्यों, दो दे दो। तो ये माया का खेल, क्या चाहिए, ये और बस इसी में जीवन बर्बाद। सुबह से रात तक इसी में लगे रहते, दो का चार, चार का आठ, आठ का सोलह कैसे बनाना। हमारे भक्त भी कभी कभी शिकार हो जाते हैं ऐसे। एक बार ऐसे हुआ कि कोई ऐसे ये होते हैं चोर होते हैं, वो ऐसे बहुत बुद्धिमान चोर होते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ व्यवस्थापन बनाते हैं कुछ, जिसमें वो कहते हैं आप 10,000 रुपये दीजिए और आपके पैसे एक महीने में डबल हो जाएंगे, दुगना हो जाएगा। तो कौन नहीं चाहता है कि एक महीने में पैसा दुगना हो जाए, कहीं भी कौन सा ऐसा व्यवसाय है क्या ऐसे जिसमें एक महीने में दुगना हो जाए। तो वो डाल देता है थोड़ा, पहले शुरुआत में भी देखते हैं 1,000 रुपये डालता है, क्योंकि तो देखते हैं बराबर उसको एक महीने में 2,000 रुपये मिल जाते हैं। फिर कहते हैं चल दो मिल तो गया ना, अभी चार मिलेगा। तो 2,000 रुपये अभी थोड़ा साहस बढ़ जाता है उसका, 10,000 डालता है, एक महीने में बराबर उसको 20,000 का चेक आ जाता है, उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है। तो अभी सोचता है, अरे वाह ये तो बढ़िया है। फिर अपने दोस्तों को भी बोलने लगता है, देखो मेरे पास ऐसे ही दो बार के दो बार आ गया, अभी वो 1,00,000 यहाँ वहाँ से पैसा उधार उधार ले के जितना उसका है, पत्नी का गहना वहना बेच के सब, फिर वो करता है डाल देता है 2,00,000, 5,00,000। दूसरे लोग भी आते हैं, फिर अगले महीने में चिल्ला कुछ नहीं, शून्य। तो ये लोग शून्यवादी होते हैं, कुछ नहीं, पैसा गया गया। ऐसे हमारे भक्तों का भी डूब गया। फिर जिस भक्त ने ये शुरू किया था, मतलब वो पहले शिकार हो गया, खुद शिकार होके उसने दूसरों को भी इसमें फंसा दिया, तो उस भक्त को बहुत डांटना पड़ा, क्योंकि इतना बुद्धि नहीं है कि ये ऐसा कौन कौन दे सकता है, ये एक चोरी ये चल रहा है, धोखेबाजी है ये सब। तो यही चलता है सब माया के खेल में, और सब कृष्ण का नाम लेते हैं। मैंने सोचा मैं जल्दी पैसे बना लूंगा, फिर मैं कृष्ण की सेवा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन कृष्ण की सेवा करने के लिए बुद्धि चाहिए, मूर्ख होने से नहीं चलेगा। ये बहुत चलता है आजकल। और ये पैसा कहाँ से आता है पता है, ये सब आतंकवाद और ये सब ड्रग्स का पैसा है, ये सब इसमें आता है, इसलिए ये लोग इतना पैसा दे सकते हैं। पहले शुरुआत में आपको लालच, आपका लालच बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। फिर जब व्यक्ति उसमें चंगुल में फंस जाता है, उनके जाल में फंस जाता है, तब बड़ा रकम लेके गायब हो जाते हैं, बैंक वैंक अकाउंट सब बंद कर निकल जाते हैं, किसी को पता नहीं कहाँ क्या क्या है। तो इसलिए ये सब माया का खेल है, हमको और के चंगुल फंस जाते हैं। जब हम अपने लिए और करने जाते हैं तो दूसरे के बारे में फिर सोचते नहीं। लेकिन जो अधिकृत है हमारे लिए वो हम ले सकते हैं, जैसे हमारी ईमानदारी की कमाई है, व्यवसाय से जो ईमानदारी से कमाई हुआ मुनाफा या लाभ है वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि राजा के लिए ईमानदारी की कमाई क्या है, प्रजा के ऊपर कर लगाना, टैक्स। तो प्रजा के ऊपर कर लगाने से फिर राजा को धन मिल जाता है, परंतु राजा को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए हर दृष्टि से। ऐसा नहीं कि राजा केवल कर ले और अपना कर्तव्य ना करे, ये नहीं चलेगा। तो पृथु महाराज एक आदर्श राजा थे, इसलिए वो कर वसूली करते तो थे, जितना उचित है उतना ही, अधिक नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में जितने भी शासन होंगे, सरकार होंगे, जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे ये लोग केवल प्रजा का शोषण करेंगे और कर वसूली आवश्यकता से कहीं अधिक करेंगे, और प्रजा इतनी हैरान हो जाएगी, हताश हो जाएगी कि वो सब छोड़ छाड़ के जंगल में और पर्वतों में चले जाएंगे, भाग जाएंगे ये अत्याचार से बचने के लिए। परंतु पृथु महाराज इस प्रकार के राजा नहीं थे, वो कर वसूली करते थे जितना उचित उतना, और फिर ये सारा धन जो है फिर अपना इस्तेमाल करते थे प्रजा के हित के लिए। अन्य जगह भागवतम में बताया गया है कि राजा को सूर्य के समान होना चाहिए, एक बादल के समान। जब वो कर वसूली करता है मतलब वो समुद्र से पानी ऊपर खींच लेता है, और फिर बादल के रूप में बादल जाके दूसरे जगह जाके पानी बरसाते हैं सब जगह। तो इसी जगह जो जो धनी है, जिनके पास धन है, उनसे कर लेके फिर सारे इस प्रजा के लिए के हित के लिए कार्य करते हैं, समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और आजकल क्या होता है कि जिनके पास कर वसूली का अधिकार होता है वो खुद पैसा खा जाते हैं, और क्योंकि वो खा जाते हैं फिर प्रजा के कल्याण के लिए बचा क्या। पिछले 30-40 साल के प्रधानमंत्री जो थे भारत के पूर्व, 30-40 साल पहले, उनका बयान है कि जो भी प्रजा के कल्याण के लिए कोई पैसे रखे जाते हैं उनमें से 90% या कुछ ऐसे उन्होंने आंकड़ा बोला था, 90 से अधिक प्रतिशत उस काम के लिए पहुंचता नहीं है, 7% बच जाता है, 93% कहाँ जाता है, अलग अलग लोगों के जेब में जाता है, ऊपर से लेकर नीचे बहुत सारे जेब है ना, तो सबके जेब में थोड़ा 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 बांट के जाता है। आजकल यही भी चल रहा है, हमारे जितने भी सरकार के दफ्तर हैं, किसी भी राजनीतिक दल के क्यों ना हो, सब में ऐसे ही चलता है। छोटे छोटे जगह से क्लार्क से लेकर वो अपना हिस्सा लेगा, थोड़ा उसको अपने ऑफिसर को देना पड़ेगा, उसको थोड़ा अपने उस जो वरिष्ठ उसको देना पड़ेगा, ऐसे करते करते ऊपर तक मंत्री तक जाता है। ये परिस्थिति है यहाँ पर आजकल, सब मिले हुए हैं। हमारे एक भक्त है जो सरकार के एक आयकर विभाग में काम करते हैं, वो बोल रहे थे कि इतना समस्या है कि वो भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि नई लोगे तो हैरान करते हैं, जीना मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि उनका बांडा फूट जाता है ना, फिर उनको नहीं मिलता है। ये एक ईमानदार आदमी आ गया तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है उनका, उनके लिए समस्या हो जाती है, तो ईमानदार आदमी को रहने भी नहीं देते अंदर। सब इतने चंगुल में फंस गए हैं इधर, ये नहीं सोचते कि जो बेचारा आदमी, प्रजा का आदमी आया है, नागरिक आया है, पीड़ित अवस्था में आया है, मृत्यु पत्र देने के लिए भी पैसा लेते हैं, कोई गरीब आया है नहीं सोचते हैं, उससे भी लेते हैं, तो भी जब स्वार्थी रहते हैं तो उसका हित के बारे में कैसे सोचेंगे? मुझे पैसा चाहिए इससे, लेकिन मेरा पैसे लेने से सामने वाले को कष्ट कितना हो रहा है, वो गरीब भी हो सकता है, उसके भी कितनी समस्या हो सकती है, नहीं सोचते हैं। क्योंकि मेरा लोभ इतना बढ़ गया है, स्वार्थ इतना हो गया कि उसको कष्ट हो ना हो मेरे को क्या परवाह है, कोई परवाह नहीं, ऐसे बोलते। तो ये विचारधारा जब तक नहीं बदलेगी तब तक कोई भी सरकार अच्छी तरह से अपना प्रजा के हित के लिए कार्य नहीं कर सकेगी। सच्चा भ्रष्टाचार कहाँ है? हृदय में है। हृदय में कैसे है? क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ भरा पड़ा है। और स्वार्थ क्यों है? सच्चा स्वार्थ के बारे में हमको पता नहीं है। सच्चा स्वार्थ है कृष्ण भक्ति, और पृथु महाराज श्रेष्ठ भक्त हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब उनका गुणगान कर रहे हैं। हे नाथ, अपनी प्रजा पर शासन करना तो आपका वृत्ति परक धर्म है। यह आप जैसे महापुरुष के लिए कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं और अपनी प्रजा के हितों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। यही आपके चरित्र की महानता है। इसलिए राज ऋषि है महाराज पृथु। हर एक नेता को ऐसे ही होना चाहिए, परंतु नहीं है, ये दुर्भाग्य है। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी महान वैष्णवों के बारे में ही कह रहे हैं। महापुरुष स्वभाव से, तात्पर्य से पढ़ रहा हूं, महापुरुष स्वभाव से अन्यों का हित करने वाले होते हैं, और एक वैष्णव तो समाज का सबसे दयालु व्यक्ति होता है। अतः हम वैष्णव नायक को इस प्रकार प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एकमात्र वैष्णव नेता ही लोगों की समस्त अभिलाषाओं को पूरा कर सकता है, और वह अत्यंत दयावान होता है, क्योंकि वह मानव समाज का महान कल्याण करता है। वह पतित पावन है। तो एक आदर्श हमारे समाज के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारे श्रीमद् भागवत में बताया गया है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी?
जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखिए, हम बताए कि वो अपने मनुष्य के बारे में भी नहीं सोचे, अपने बारे में नहीं सोचे और दूसरे अरे जीवों के बारे में सोचे। तो एक भक्त के लिए, नॉर्मल प्रैक्टिशनर के लिए, कि अपने बारे में नहीं सोचना मतलब खाली भौतिक के बारे में नहीं सोचना, कि अपना आध्यात्मिक के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि जैसे अगर ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि कहीं कहीं पे अपना साधना हो या ये सब के बारे में थोड़ा सा ये करना पड़ता है, वहाँ पे बैलेंस करने का।
नहीं, अपने बारे में नहीं सोचना इसका मतलब ये नहीं कि अपने को अपने आप को नष्ट कर देना। हाँ, अपने आप की रक्षा भी करनी चाहिए, परंतु जो एक अधिकृत मात्रा है उसमें। ऐसा नहीं कि अपने हित को झूठा समझ के ये समझें कि जितना मैं घूस लूँगा, मैं बैठा हूँ इस दफ्तर में, इस कुर्सी में बैठा हूँ, जितना हो सके घूस लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा घूस लूँगा, क्योंकि ये मेरे हित में है। जो अपने हित की गलत धारणा होती है ना, उसको त्यागना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई कर्मचारी है वो कहे कि मैं तनख्वाह ही नहीं लूँगा, फिर वो जिएगा कैसे, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, बराबर। तो गलत उसका अपने शक्ति का, अपने पद का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ये बात है। और फिर जो अपने कर्म का फल मिलता है ईमानदारी से, फिर उसको फिर दान में देना, उसको भी प्रजाहित के लिए इस्तेमाल करना, वो अलग बात। तो उसी तरह से हमें अपने आध्यात्मिक भलाई के लिए भी देखना चाहिए, परंतु एक संतुलन होना चाहिए। जैसे यदि हम कहेंगे कि हम दूसरों की भलाई करेंगे और दूसरों की भलाई करते करते अपना जप छोड़ देंगे, श्रवण कीर्तन छोड़ देंगे, तो फिर हम खुद इस भावना में टिक नहीं पाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा और ये जो अन्यों का भला करने का भाव है ये भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम दूसरों को यदि मदद करना चाहते हैं तो कम से कम सबसे पहले अपने आप को हृष्ट पुष्ट रखना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से भी। वैसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं, जैसे महाराज शिबी हैं, महाराज रंती देव हैं, दधीची ऋषि हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार जो हुए थे, परंतु हमारे लिए तो ये दैनिक जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है ना कि अपने प्राण हुई त्याग दें हम अन्यों के लिए। तो अपने आप की रक्षा के लिए, आध्यात्मिक रक्षा के लिए, और शरीर का जो एक साधारण जितना उसका भरण पोषण के लिए आवश्यकता है उतना करना चाहिए।
भारत भूमि ते मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करे,
जन्म
हुईलो जार जन्म सार्थक करे कर परोपकार। तो इसमें जन्म सार्थक करे स्वार्थ में आता है,
जन्म सार्थक। हाँ, तो सार्थक करना मतलब अपने सच्चे स्वार्थ की पूर्णता करना, अर्थात कृष्ण भक्त बन जाना, शुद्ध कृष्ण भक्त बनना। भारत भूमि में जन्म सार्थक कब होता है? जब हम शुद्ध कृष्ण भक्त बन जाएंगे तब।
फिर बाद में परोपकार, पहले शुद्ध कृष्ण भक्त।
ऐसे नहीं कि हम राह देखेंगे वो शुद्ध भक्त बनने तक, अब बने नहीं बने पता नहीं, तो हम राह देखते तब तक किसी का हम कल्याण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। साथ साथ अन्यों को कृष्ण भक्ति भी देना है, जितना हम समझे हैं उतना देना है सबको, कीर्तन करके, उनको ज्ञान दे के, हमें प्रयास करना है। भले हम पूरी तरह से शुद्ध ना हो, जितना हमें पता है हमें देना चाहिए, हमारी क्षमता कितनी है उतना देना चाहिए। हाँ हर्षा, क्या प्रश्न है?
हमारे उदार चेतना और जड़ भरत चेतना, अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया
उदार चेतना और जड़ भरत चेतना। हाँ,
जैसे जड़ भरत का एग्जांपल आता है, तो अभी कोई जैसे भागवत में वर्णन आता है कि आगे जाके बहुत सारा कर वसूल किया जाएगा, तो उस स्थिति में जो नागरिक होगा, वो नागरिक जब उस स्थिति में अपने आप को देखेगा, तो वो ये भी सोच सकता है कि मैं अपने प्रयास से कुछ नहीं कर सकता, भगवान कुछ तो करेंगे इसके लिए मैं बस
एक नहीं। ये तो गीता भागवत का कथन नहीं है ना कि भगवान की कृपा ऊपर रहेंगे और ऐसे हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाएंगे। नहीं, वो जो दामोदर लीला में दो उंगली कम पड़ने का जो है रस्सी का, उसका तात्पर्य यही है ना कि भगवान की कृपा चाहिए और अपना प्रयास भी चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल हम भगवान की कृपा के ऊपर प्रतीक्षा करते रहें और कुछ करें नहीं, आलसी बन के दिन भर सोते रहें, भगवान की कृपा जब आएगी तब हम भक्ति में आएंगे। नहीं,
हमारा प्रयास भी फिर स्वार्थ के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है।
हाँ, स्वार्थ तो, लेकिन सच्चा स्वार्थ, सच्चा स्वार्थ कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भक्त बनने के लिए हमें जो भी करना है वो स्वार्थ सही है, ये सच्चा स्वार्थ है। लेकिन जब अपने स्वार्थ को हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं वो गलत स्वार्थ है। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय।